ओम शांति। हम सबके बीच में हमारे आदरणीय राजू भाई जी पहुंच चुके हैं, तो हम सभी जोरदार तालियों से का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भाई जी के परिचय में मैं आप सबको बताने जा रही हूं कि आपका जन्म कानपुर के पास उत्तर प्रदेश के एक गांव के आध्यात्मिक परिवार में हुआ और 1972 से ये समर्पित रूप में माउंट आबू के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने सिंधी भाषा सीखकर 1976 से हिंदी मुरली टाइप करने की सेवा शुरू की। मुरली में जो सार, वरदान तथा स्लोगन आदि आते हैं उसकी सेटिंग आप ही करते हैं। आपने ज्ञान सरिता, ज्ञान सुमन, ज्ञान वीणा, ज्ञान के अनमोल मोती आदि अनेकों पुस्तकें भी लिखी। राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के आप उपाध्यक्ष भी हैं। मुख्यालय से प्रतिमास निकलने वाला पत्र पुष्प ही आप ही प्रकाशित करते हैं तथा मुख्यालय से दादी जी की तरफ से पत्र व्यवहार भी आपके द्वारा ही होता है। आपके द्वारा किया गया टॉक शो अनमोल रतन प्रतिदिन पीस ऑफ माइंड चैनल पर प्रसारित किया जा रहा है। आपने विश्व भ्रमण करते हुए विश्व के पांचों खंडों एवं एशिया के विभिन्न देशों में भ्रमण करके विश्व स्तर के महासम्मेलनों को संबोधित किया तथा विभिन्न रेडियो, टेलीविजन इंटरव्यू द्वारा ईश्वरीय सेवाओं को गति प्रदान की। तो आज हम सबके बीच में ऐसी श्रेष्ठ सेवा करने वाली महान विभूति हाजिर हैं, जो आज हम सबको ये बताएंगे कि कैसे स्वच्छ और साफ दिल रख करके हम बाबा को याद कर सकते हैं, सेवा में आगे बढ़ सकते हैं। तो एक बार फिर से हम जोरदार तालियों से हमारे भाई जी का अभिनंदन करते हैं।
ओम शांति। बाबा के इस बेहद घर में विशेष योग तपस्या के लिए आप आए हैं। तपस्या का आज हमने बाबा के महावाक्यों में बहुत सुंदर अर्थ सुना, समझा। सफल तपस्वी किसको कहा जाता है, उसकी पर्सनैलिटी क्या होगी, उसकी रियलिटी क्या होगी। तो सभी मधुबन घर से ऐसे सफल तपस्वी बन करके जाना जिसके अंदर प्योरिटी की इतनी पर्सनैलिटी आ जाए, वास्तव में जो सच्चाई सफाई है, जो आज का टॉपिक है स्वच्छ बुद्धि साफ दिल। हम सब यही अभ्यास करते हैं कि मन और बुद्धि बहुत स्वच्छ साफ रहे, इसमें कोई भी प्रकार का व्यर्थ का किचड़ा मिक्स न हो, क्योंकि बुद्धि योग है, मन मनाभाव है। शिव बाबा को अगर हमें याद करना है, उनकी शक्तियों का अनुभव करना है, तो बुद्धि को बहुत स्वच्छ रखने की आवश्यकता है। बुद्धि अस्वच्छ कैसे होती है, क्योंकि बुद्धि कई प्रकार की बातों को अगर सोचने लगती है, बहुत सारे विचारों में भटक जाती है, तो भटकती हुई बुद्धि अस्वच्छ हो जाती है। देह मन की कई ऐसी बातें मन के अंदर आती हैं, जो बुद्धि को मैला बना देती हैं। बुद्धि की अस्वच्छता सबसे बड़ी, जो बाबा हमेशा ही हमारा ध्यान खिंचवाते हैं, जब बुद्धि में आता है मैं और मेरा, ये मैं और मेरा बुद्धि को मलिन बना देता है। हम सब ने बाबा को मन और बुद्धि को समर्पित किया है। हमें दादियों की एक बात याद रहती है, जब कभी हम भाइयों का विशेष क्लास कराती थी तो एक बात कहती थी, तुम अपने विवेक को समर्पित करो। विवेक को समर्पित करना, मेरा विवेक बड़ा राइट है, मैं जो सोचता हूँ, जो मैं कहता हूँ, जो मैं करता हूँ, जो मेरी प्लानिंग है, वो बिल्कुल राइट है। और इस राइट समझने के कारण कई बार जो उसमें अहम भाव आता है, और विशेष करके रोब के चिन्ह दिखाई देते हैं, अहंकार के चिन्ह चेहरे पर आ जाते हैं, मैं समझदार हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मेरी बहुत अच्छी प्लानिंग है, मेरी बुद्धि बहुत साफ है, कभी भी अपनी साफ बुद्धि का भी अहंकार आ जाता है। बाबा हम सब बच्चों को इस समय बहुत बहुत निरहंकारी बनाते हैं। बुद्धिवानों की बुद्धि हमारा बाबा है, और उसने हम सबको इतनी विशाल बुद्धि बनाई। दो टाइटल हमें देते हैं बाबा, एक हमारी बुद्धि दूरादेशी और दूसरी विशाल बुद्धि। दूरादेशी बुद्धि जब कहते हैं तो सबसे दूर क्या है? परमधाम घर। एक सेकेंड में हम उस घर का अनुभव करने लगते हैं बुद्धि बल से। बुद्धि को विमान भी कहा जाता है, जैसे बाबा ने मन को उड़न खटोला कहा है, ऐसे ही बुद्धि एक बहुत सुंदर विमान है, जिस बुद्धि बल से हम इस भौतिक जगत से, पांच तत्वों की दुनिया से पास, अपने सूक्ष्म वतन और मूल वतन तक पहुंचते हैं। अगर ये अभ्यास हम करते हैं तो हम दूरादेशी हैं, दूर देश को जानने वाले, उसका अच्छा अनुभव करने वाले हैं। तो आप सभी ने इस भट्टी के अंदर अनुभव किया है दूर देश का। एक सेकेंड में यहाँ बैठे हैं मन बुद्धि से बाबा के सामने, अपने मूल स्वरूप में, अपने निराकारी स्वरूप में स्थित होकर के बाबा की शक्तियों का, उनके साथ कंबाइंड होने का अच्छा अनुभव दूरादेशी बुद्धि वाली आत्मा कर सकती है। और दूसरा है विशाल बुद्धि। विशालता ये है, जो बाबा ने हम सबको सृष्टि के आदि, मध्य, अंत, पूरा ही पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का ज्ञान दिया है, त्रिकालदर्शी बनाया है। आने वाले कल को भी हम जानते हैं, और जो बीत गया है कल उसको भी जानते हैं। इसलिए जो विशाल बुद्धि हैं वो त्रिनेत्री और त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। हम सभी अपनी बुद्धि को इतना स्वच्छ बनाएं, उसमें जरा भी कोई अस्वच्छता किसी के बारे में, अगर बुद्धि में कोई गलत विचार चलते हैं। साकार बाबा की मुरलियों में कुछ समय से आप विशेष सुन रहे हैं, बच्चे बहुत सा समय झरमुई झगमुई में व्यर्थ चिंतन में जा रहा है। वास्तव में व्यर्थ चिंतन, जिसको हम पर चिंतन कहते हैं, पर दर्शन कहते हैं, यही बुद्धि की मलिनता, बुद्धि को अस्वच्छ बनाने वाला है। इसलिए हरेक बाबा के बच्चे को अगर अपनी बुद्धि को स्वच्छ रखना है तो उसके लिए स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है, पर चिंतन पतन की जड़ है। स्वच्छ बुद्धि वाली आत्माएं केवल स्वदर्शन करती हैं, स्वचिंतन में रहती हैं। अगर कोई दूसरे का दर्शन कर रहे हैं, दूसरे का चिंतन कर रहे हैं, ये क्या करता है, ये क्या करता है, व्यर्थ बातों को देखना, सुनना, वर्णन करना, ये बुद्धि को अस्वच्छ बनाना है। संगम युग पर हम सब बाबा के बच्चों को बहुत अटेंशन देना है कि बुद्धि एक बहुत बड़ी शक्ति है, बुद्धि बल है, ये बुद्धि सदा दिव्य और अलौकिक रहे। मैं एक दिन की बात सुनाता हूँ। बाबा मेरे से, हम मधुबन निवासियों से अकेले मिल रहे थे, एक एक को पर्सनल मिल रहे थे। तो बाबा ने जब सब भाइयों से बात किया, मधुबन के भाइयों से, तो लास्ट में जब मैं बाबा के सामने गया तो बाबा ने अचानक मुझे कहा कि बच्चे, तुम्हारी बुद्धि दिव्य बुद्धि बन गई है। जैसे दिव्य बुद्धि का वरदान बाबा से मिला और एक उसका मूल कारण जब बाबा ने कहा दिव्य बुद्धि का वरदान, तो मुझे थोड़ा सा संकल्प आया कि ये तो हमारी मीठी मम्मा का बुद्धिदात्री है, बुद्धिमानों की बुद्धि है, जगत अम्बा सरस्वती जिसको हम कहते हैं, विद्या की देवी हैं, उस सबको बुद्धि का वरदान देती हैं। और आज बाबा मुझे कह रहे हैं तुम्हें दिव्य बुद्धि का वरदान मिल गया है। तो बाबा ने कहा क्यों मिला है? तो मैं बाबा की तरफ देख रहा था। बाबा ने कहा बच्चे, तुमने अपनी बुद्धि को केवल स्वचिंतन, स्वउन्नति, अपनी और दूसरों की, उसमें ही लगाया है। शुरू से अभी तक इस बुद्धि में स्वचिंतन की बजाय स्वउन्नति, ब्राह्मण परिवार की उन्नति की बजाय और कोई भी संकल्प आने नहीं दिया, इसलिए बुद्धि को दिव्यता का वरदान मिल गया है। और आगे कहा, ये बुद्धि जो चाहे वो कर सकती है, सिर्फ अटेंशन और रखना। हम सब और कोई पहरा दें या न दें, लेकिन हमारी ये बुद्धि बहुत दिव्य, स्वच्छ, पवित्र रहे। कुछ भी देखो, बाबा कहते हैं देखते हुए भी नहीं देखो। है दुनिया के अंदर तमोगुण बढ़ रहा है, अत्याचार पापाचार बढ़ रहा है, अगर बहुत कुछ हम व्यर्थ देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, तो हमारी बुद्धि की दिव्यता, हमारे बुद्धि की स्वच्छता नष्ट हो जाएगी। इसलिए जब हम सब जानते हैं कि ये कलयुग का अंतिम चरण, अंतिम समय चल रहा है, चाहे वो ब्राह्मण आत्माएं हैं, चाहे वो अज्ञानी आत्माएं हैं, सभी को अपना अपना पुराना हिसाब चुकतू करना है और हर एक के सामने कई न कई प्रकार की परीक्षाएं, पेपर्स आते हैं, अगर उनको देखा सुना और बहुत सोच लिया विचार कर लिया तो ये बुद्धि ठीक समय पर ठीक निर्णय नहीं करेगी। बुद्धि एक इतनी बड़ी शक्ति है जो समय पर परिस्थितियों को देखते व्यक्तियों को देखते तुरंत राइट और रांग को समझ जाए परख ले तभी वो सफल हो सकता है। और अगर नहीं समझ पाया तो कहां पर किस व्यक्ति से धोखा मिल जाएगा, कौन व्यक्ति आपको ठग करके जाएगा पता ही नहीं चलेगा। इसलिए इस बात को जो मैं कह रहा हूं थोड़ा सा ध्यान से सुनना। इस समाज में इस संसार में चलने के लिए बुद्धि बहुत साफ स्वच्छ चाहिए, जिसमें स्पष्ट सामने वाली आत्मा किस भावना से आई है किस विचार से आई है उसका आंतरिक लक्ष्य क्या है उसको हम सही रीति से परख सकें। परखने की शक्ति बुद्धि के पास है। बुद्धि अगर कहीं भी डिस्टर्ब है, बुद्धि अगर कहीं थकी हुई है, बुद्धि पर अटेंशन का पहरा नहीं है, बहुत सारी बातें बुद्धि के ऊपर बोझ के रूप में आपने रखी हुई हैं, तो ये बुद्धि थकी हुई बुद्धि समय पर परख भी नहीं सकेगी और निर्णय भी नहीं ले सकेगी। इसलिए आत्मा की ये जो चैतन्य शक्ति मन और बुद्धि है इसको बहुत स्वच्छ रखो, साफ रखो। इसमें केवल एक बाबा को बिठाओ और कोई भी आत्मा के न गुणों को बिठाना है न अवगुणों को बिठाना है। अगर किसी के गुण भी बुद्धि को प्रभावित कर देंगे तो वो आत्मा अपनी तरफ आपको आकर्षित कर लेगी, बाबा तक नहीं पहुंचने देगी। बाबा ने तो यहां तक कह दिया है कि बच्चे तुम ब्रह्मा बाबा में भी अपनी बुद्धि को नहीं फंसाना, ये भी देहधारी है, तुम्हें एक शिव बाबा से अपना बुद्धि योग लगाना है, शिव बाबा से शक्ति लेनी है, ये माध्यम है, लेकिन याद एक को करना है। कितना प्यार से बाबा ने हम सब बच्चों को एक वृत्ता बुद्धि बनाई है, एक में बुद्धि रहे, एक में एक की याद रहे, एक बल एक भरोसा, एक बाबा दूसरा न कोई, ऐसी एक वृत्ता स्थिति अगर है तो ये बुद्धि बहुत स्वच्छ है, साफ है और समय पर ठीक निर्णय ले सकती है, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। कई बार बाबा के कुछ बच्चे बहुत भोले हो जाते हैं और भोलेपन में कहीं न कहीं भटक जाते हैं। कोई आत्मा सामने वाली थोड़ी बुद्धिमान है, उसकी बुद्धि बड़ी रिसर्च वाली है, तो मुरली में भी कई अच्छी अच्छी टॉपिक पर चिंतन करके सबके आगे सुनाती है रखती है, ये व्यक्ति ये भाई बहुत अच्छा है, ये बाबा जैसा ही है। इस तरह से अगर आत्मा किसी देहधारी की तरफ झुकाव हो गया, प्रभाव पड़ गया, प्रभावित हो गई तो ये बुद्धि मलिन हो जाएगी, कोई कितना भी अच्छा है बहुत विशेष है लेकिन प्रभु की देन इसको मिली हुई है, इसकी अपनी विशेषता नहीं, इसको बाबा ने भगवान ने दी है, इसलिए उसकी तरफ आकर्षित होने की बजाय अगर हम बाबा को देखते हैं, बाबा की तरफ हमारा ध्यान जाता है तो ये बुद्धि बड़ी स्वच्छ बन जाती है। आप सब इस बात पर अंडरलाइन करना, इस कलयुग के अंतिम पड़ाव में, अंतिम समय में हम सबको बहुत साफ स्वच्छ ऐसी बुद्धि रखनी है जो डायरेक्ट बाबा की टचिंग को मैं कैच कर सकूं। बाबा कई बार कहते हैं, मैं अपने बच्चों को टच तो करता हूं, बच्चे रॉन्ग है, राइट है, ये करो ये नहीं करो, लेकिन मेरे बच्चे अपनी बुद्धि को इतना इंगेज करके रखते हैं जो मेरी टचिंग को कैच ही नहीं कर पाते। और फिर कहते, बाबा ने मुझे मदद नहीं की, बाबा ने मुझे टच नहीं किया। आज अगर आपने अपने मोबाइल को, अपने फोन को इंगेज करके रखा है, हम कितना भी आपको घंटे दें, इंगेज है। अगर ये बुद्धि कहीं भी इंगेज कर दी, किसी भी चिंतन में इंगेज कर दी, व्यर्थ देखने सुनने बोलने में इंगेज कर दी, कमी और कमजोरियों का चिंतन करने में इंगेज कर दी, किसी के प्रभाव में आकर के उधर बुद्धि को लगा लिया, ये बहुत अच्छे हैं, बहुत गुणवान हैं, बहुत अच्छे सहयोगी हैं, स्नेही हैं, किसी भी व्यक्ति की तरफ यदि आत्मा मन बुद्धि से प्रभावित हो गई, या किसी आत्मा के साथ घृणा भाव पैदा हो गया, नफरत हो गई, टकराव की स्थिति हो गई, ये दोनों तरफ से बुद्धि मलिन हो जाएगी। इसलिए हम सब बहुत अटेंशन दें अपनी बुद्धि को स्वच्छ रखने का। मम्मा का एक शब्द सुनाता हूं। मातेश्वरी मम्मा हम सबको एक बात सिखाती थी, इस शरीर को कुछ भी हो लेकिन बुद्धि सदा सालिम रहे, बुद्धि को डिस्टर्ब होने नहीं दो। शरीर अगर कुछ हो गया नीचे ऊपर, तो उसको संभालने वाले बहुत सारे साथी संबंधी मिल जाएंगे, लेकिन अगर ये डिस्टर्ब हो गया तो सब किनारा कर लेंगे। इसलिए हम सब अपने बुद्धि को बड़ा स्वच्छ निर्मल निर्माण चित बना करके रखें, गुणग्राही हो करके जरूर रहो लेकिन गुणों पर प्रभावित नहीं होना, प्रभावित केवल एक बाबा पर हो। बाबा आप मिल गए, संसार मिल गया, जो ऐसे एक वृत्ता वाली आत्माएं हैं, जो एक बल एक भरोसे में चलने वाली आत्माएं हैं, जो एक को देखने वाली हैं, एक के ऊपर नजर रखने वाली हैं, वो बहुत साफ स्वच्छ बुद्धि वाली हैं, और वो सही समय पर राइट और रॉन्ग को अनुभव करके दुख और धोखे से बच सकती है। इसलिए सबसे पहली बात, हम सब अपने आप पर ध्यान दें, हमारी ये चैतन्य शक्ति, आत्मा की चैतन्य शक्ति मन और बुद्धि है। बाबा कहते हैं, बच्चे मन मना भव, मन को मेरे में लगाओ, मन को भटकने नहीं दो, मन अपने नियंत्रण में रहो रखो, इस पर आपका पूरा कंट्रोल हो। मन जीते जगत जीत, जो संकल्प करो, जहां पर इसको ले जाना चाहो, ये आपका वाहन, अंतर मन वाहन आपको अच्छी सैर कराए, मन वाहन से उस स्थान पर पहुंचो और बुद्धि से उस स्थान का अनुभव करो। अगर उसका अनुभव कर लेंगे एक बार, तो अनुभव एक बहुत बड़ी शक्ति है। इसलिए अनुभव कराने वाली शक्ति बुद्धि है। तो बुद्धि को परचिंतन में, व्यर्थ बातों में डिस्टर्ब होने नहीं देना, अधिक सोच सोच करके भटकाना नहीं। बाबा मिल गया, मंजिल मिल गई, ठिकाना मिल गया, फिर बुद्धि कहां कहां भटकती है और क्यों भटकती है। अगर सचमुच स्वयं में निश्चय है, हमारा अपने बाबा में निश्चय है और इस कल्याणकारी ड्रामा में निश्चय है और हमें इतना सुंदर बेहद का परिवार मिला है, उस परिवार में पूरा निश्चय है, तो निश्चय बुद्धि विजयंती, वो आत्मा भटक नहीं सकती। स्वयं में निश्चय क्या है? मैं आत्मा हर कल्प की विजयी आत्मा हूं, कोई भी प्रकार के कमजोर संस्कार हैं, स्वभाव हैं, आदतें हैं, कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना, छोटी दिल नहीं करो। सदा स्मृति में रहे कि बाबा ने हमें कितनी ऊंची नजर से देखा है, बाबा अपने बच्चों को कितने ऊंचे सम्मान याद दिलाता है, जो बाबा के टाइटल हैं वो हम बच्चों के सम्मान हैं। बाबा अपने बच्चों को कहते हैं तुम कल्प कल्प की विजयी आत्मा हो, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तुम वैजयंती माला के मणके हो। इस सम्मान में रह करके स्वयं में इतना निश्चय है, कोई भी परिस्थिति कैसी भी बातें आ जाएं, कल्प पहले भी मैंने विजय प्राप्त की थी, अभी भी मैं विजयी बन करके दिखाऊंगा, है ना सा, रहता है ना सा ये। अगर स्व में संपूर्ण निश्चय है तो कभी भी अपने आप से आत्मा निराश, उदास, दिल शिकस्त नहीं होती। कैसी भी बड़ी परिस्थितियां आ जाएं, अपनी बुद्धि को डिस्टर्ब होने नहीं देती। ध्यान देना, कभी भी अपनी बुद्धि को किसी भी बात से डिस्टर्ब होने नहीं देना। बाबा बैठा है, सब ठीक हो जाएगा, उससे हमारा जिगरी प्यार है, संबंध है, उसके लिए अब सच्ची दिल चाहिए। कहते हैं सच्ची दिल पर साहेब राजी। अगर सचमुच भगवान को राजी करना है, कहते हैं भगवान जिस पर राजी तो माया काजी क्या कर सकता है। कितने भी बड़े रूप में माया का वार हो, परिस्थितियां कितनी विकट परेशान करने वाली हों, लेकिन अगर भगवान को हमने राजी किया है तो कैसे राजी होता है? वो तो भोलानाथ है, बहुत भोला है, भोलों का नाथ है, खुद भोला नहीं है, लेकिन राजी कैसे होता है? भगवान को राजी किया सभी ने, राजी हुआ तब तो यहां पहुंचे हो ना। हाथ उठाओ जो समझते हैं भगवान हमारे पर राजी हुआ है। दो दो उठा रही माता, वाह, राजी है ना कि नहीं? नाराज तो नहीं है ना? भाइयों ने भी राजी किया है ना? पांच बातें मैं बताता हूं, अगर पांचों में एक भी कमी होगी तो राजी नहीं होगा, वो चेक कर लेना। पहली है सच्ची साफ दिल, और उसको कहते हैं जिसकी कथनी और करनी समान है, जो अंदर है वही बाहर है। कई बार बाहर का रूप तो बहुत अच्छा होता है, ब्राह्मणों का भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन अंदर मुख में राम बगल में छुरी। कई बार ऐसी बातें सामने आती हैं, दिखाई देता है, ड्रेस सफेद पहन लिया, बैज पहन लिया, ब्रह्मा कुमार का लकब ले लिया, टाइटल मिल गया, लेकिन लक्षण एक भी नहीं दिखाई। वही आदतें हैं, वही खान पान है, वही चिंतन है, वही चरित्र है, और कहता है मैं ब्रह्मा कुमार हूं। आप सब इस पर ध्यान देना, इस बात पर कि जो कुछ हम दूसरों को कहते हैं पहले उसका अनुभव मैंने किया है, वो जीवन मेरी है, या ऐसे ही हम बाबा की सुनी सुनाई बातें दूसरों को सुना रहे हैं। अगर मैंने अपनी जीवन ऐसी बनाई है तो हमारे कहने का दूसरों पर प्रभाव पड़ता है, कहना भी नहीं पड़ता है। बाबा चाहते हैं मेरे बच्चों के कर्मों से गुणों का दान हो, जो कर्म करें इनको देख करके दूसरे सीख जाएं, कहना क्यों पड़े। आपको अमृत वेले उठना चाहिए, आपको मुरली क्लास में आना चाहिए, आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन खाना चाहिए, आपको अच्छा संग करना चाहिए। दूसरों को तो हम बहुत सारी बातें कहते, लेकिन क्या मैं इन सब नियमों को दृढ़ता के साथ पालन करता हूं? जो कर रहा हूं वही कहता हूं, या कहता हूं हां अमृत मिले तो बहुत अच्छा है और मैं खुश सोया रहता हूं? प्रभाव नहीं पड़ेगा। कथनी और करनी अंतर दिखाई देगी तो कोई भी मानेगा नहीं और बाबा भी कभी राजी नहीं होगा। इसलिए भगवान को राजी करने के लिए हम सब की जो कथनी है, जो हम मुख से उच्चारण करते हैं, वो हमारे आचरण में होना चाहिए। जब उच्चारण और आचरण दोनों समान बन जाएंगे तब कहेंगे इसकी दिल सच्ची और साफ है। आचरण अलग है, उच्चारण बहुत अच्छा है। उच्चारण में तो क्या वंडरफुल बातें बाबा की, कितनी अच्छी अच्छी सुना देते हैं। क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध महाशत्रु है, और कोई छोटी सी बात जो मन पसंद नहीं है तुरंत क्रोधित हो जाना, तुरंत कुवचन निकाल देना, मुख मोड़ लेना, किनारा कर लेना। क्या मेरी कथनी और कहनी समान है? हम कहते हैं लोभ एक बहुत बड़ा विकार है, लोभ पर हमारी जीत होनी चाहिए, लेकिन हमारी आसक्तियां अभी तक कहां कहां हैं? कौन कौन सी चीजें मेरी को आकर्षित कर रही हैं? धन, साधन, सुविधाएं, मान, शान, नाम, अगर उसके पीछे हमारी बुद्धि भटक रही है तो हम अनासक्त कैसे हुए? अगर अनासक्त हम नहीं हैं और हम दूसरों को कहते हैं लोभ वृत्ति से कोई लाभ नहीं है, ये भ्रष्टाचार है, तो दूसरों के भ्रष्टाचार को मिटाने वाले खुद को देखें, मैं भ्रष्टाचार से मुक्त हूं, मेरी जीवन हर बात में बिल्कुल अनासक्त है, बाबा दो रोटी खिला रहा है, प्यार से रख रहा है, मुझे झूठ चोरी करके, ठगी करके, उल्टा सीधा धंधा करके ऐसी कमाई न खुद स्वीकार करनी है न परिवार को खिलाना है। ये हमारी कथनी और करनी में समानता चाहिए, और जब कथनी और करनी समान हो जाएगी तो बाबा प्रसन्न हो जाएगा, राजी हो जाएगा। ये बच्चे जो दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं, समझा रहे हैं, इन्होंने पहले उसको पालन किया है। दूसरी बात है, बाबा को सबसे पसंद है अव्यभिचारी याद। अव्यभिचारी याद माना एक के सिवाय और कोई आत्मा मुझ आत्मा को खींचे नहीं, एक की स्मृति निरंतर रहे, एक को मैंने पहचाना है, एक पर हम न्योछावर हुए हैं, एक को हमने जीवन समर्पित की है। अव्यभिचारी, जरा भी व्यभिचारपन नहीं है, जरा भी किसी देहधारी की तरफ बुद्धि नहीं जाती है, मेरा तो बाबा बस मिल गया, पाना था सो पा लिया। कहीं पर भी बुद्धि किसी के प्रभाव में न भटके, अव्यभिचारी याद एक की सदा बनी रहे, इस पर अटेंशन देना। बाबा उन पर बहुत राजी होता है। तीसरी बात है जो आज बाबा हमारा ध्यान खिंचवा रहे थे, संपूर्ण पवित्रता को जिसने अपनाया है, परमात्मा को जो खींचने वाली बात है, जो शक्ति खींचती है, वो इवर प्योर है, परम पवित्र है। और उसके बच्चे अगर उस पवित्रता को दृढ़ता से पालन करते हैं, मन वचन कर्म से पालन करते हैं, व्यर्थ को भी टच नहीं करते। बहुत गहरी बात है ये, हम सब इस पर ध्यान दें। कई प्रकार के संकल्प विकल्पों में जो आत्मा रमण कर रही है, वो संपूर्ण पवित्र नहीं है। और पवित्रता भगवान को बहुत प्रिय है, वो बहुत जल्दी अपने सच्चे पवित्र भोले बच्चों पर राजी हो जाता है। सच्चा है, पवित्र है, स्वच्छ है। तो हम सब बाबा के बच्चों को ये संकल्प करना है, दृढ़ता से संकल्प करना है, इस ब्राह्मण जीवन में मुझे संपूर्ण पावन बनना है। कहीं भी अपवित्रता मन को भी डिस्टर्ब न करे, संकल्पों को भी हिलाए नहीं, इतने शुद्ध और पवित्र संकल्पों में रमण करना। तीन प्रकार की पवित्रता बाबा हमें सिखाते हैं। एक मन की, जिसमें सदा सकारात्मक शुद्ध संकल्प चलते रहें। वचन की, हमारी वाणी बड़ी सरल मधुर सम्मानजनक हो, और हमारे कर्म बहुत नम्रता से, करावन हार की स्मृति से, निमित्त भाव से हो। अगर कर्म में निमित्त भाव है, निर्माणता है, बोल में मधुरता है, सरलता है, संकल्पों में शुद्धता है, सकारात्मकता है, माना वो आत्मा पावन है, पवित्र है। और ऐसे बच्चे बाबा को बहुत प्यारे लगते, भगवान उन पर सहज राजी हो जाता है, उसकी सच्चाई बाबा को बहुत खींच लेती है, अंदर बाहर की आनेष्टि है। वास्तव में आनेष्टि ही पवित्रता है, बहुत आनेष्ट है ये, ईमानदार है। जिसको चौथी बात कहें, प्रवृत्ति में, घर गृहस्थ में, हर कार्य व्यवहार में रहते हुए जो ट्रस्टी बन करके रहते, ट्रस्टी, जो कुछ बाबा का है उसने हमें अगर दिया है सेवा के लिए, संभालने के लिए, हमने तो भक्ति में भी यही कहा था, ये तन, ये मन, ये धन सब तेरा है, लेकिन मूर्ति के आगे कहा था, इसलिए शायद ये भावना रही कि तो सुनती नहीं है। अभी तो चैतन्य स्वरूप में बाबा सामने है, सुन लेता है कि बच्चे क्या कहते हैं। अगर सचमुच मैंने बाबा को अर्पित किया, ये बाबा तन तेरा है, ये मन तेरा है, और जो तूने धन दिया, परिवार दिया, संबंध दिए, सब तेरे हैं, तेरा कहो, मेरे पन की मैल से छूट जाओगे, बोझ से हल्के हो जाओगे। लेकिन तेरा कहने के बाद बाबा कहता, अच्छा बच्चे, तूने मुझे दिया, अब मैं तुम्हें अमानत के रूप में ये चीजें देता हूं, तो मैं क्या करूंगा। अब बाबा ने अगर ये तन मुझे अमानत के रूप में दिया है, तो चेक करना इस अमानत में कहीं ख्यानत तो नहीं है। तन केवल एक बाबा के कार्य के प्रति अर्पित है, भले लौकिक जवाबदारियां भी हैं, जो कुछ कर रहे हैं श्रीमत प्रमाण कर रहे हैं, नौकरी है, बिजनेस है, कुछ भी कार्य है, ये बाबा की आज्ञा अनुसार मैं कर रहा हूं, बाबा के लिए कर रहा हूं, इस संगम के समय पर हरेक बाबा के बच्चे को केवल एक ईश्वरीय सेवा के लिए समर्पित होना है। भले लौकिक कितनी भी सेवाएं हों, लेकिन ये सब सेवाएं एक ईश्वरीय बंधन में, ईश्वरीय सेवा में समा देना है। तन बाबा के लिए है। तन से अगर हम कोई शरीर निर्वाह का कार्य भी कर रहे हैं, तो शरीर निर्वाह में अगर धन आ रहा है तो वो धन प्रभु अमानत है। उसको देखा देखी में, उसको किसी से भेंट करके व्यर्थ खर्च नहीं कर सकते। 50 रुपया भी हमने कमाया है, सच्ची कमाई है, ये बाबा के ही कार्य में लगेगी, इधर उधर शौक मौज में नहीं। ये प्रभु अमानत है। उसकी श्रीमत प्रमाण हमारे पास आई है, इसको मुझे संभालना है, इसको मुझे सफल करना है, ईश्वरीय सेवा में लगा करके इसको बढ़ाना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है। क्या करते हैं परिवार वाले? बन तो बाबा के बच्चे गए हैं, लेकिन कई बार अपने ही लौकिक संबंधियों को देखते हैं, उसने अपने बच्चे की शादी में, अपने बेटे की बेटी के शादी में इतने लाख रुपए खर्च किए, इतना बड़ा सामियाना लगवाया, इतने लोगों को भोज कराया, इतने दहेज दिया, इतना ये किया, मैं कोई कम थोड़ी हूं, दिखावा। और बाबा को दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए दिखावा कर रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं? मैं धनवान हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, ये सब धन उसका है, उसकी अमानत मैं संभाल रहा हूं। किसी से भेंट करके ईश्वरीय धन को, संपत्ति को व्यर्थ के, देखा देखी के काम में नहीं लगा। आवश्यक है, समझ रहे हैं, परिवार है, शादी है, समारोह है, कुछ करना पड़ता है, जवाबदारियां हैं। बाबा कहता है निमित्त मात्र, कम से कम खर्चे में उस काम को उतार दो। ये ईश्वरीय अमानत, कहीं भी व्यर्थ खर्च नहीं होनी चाहिए। तब कहेंगे ये आत्मा ट्रस्टी है, और जो ट्रस्टी है वो प्रभु का प्यारा है। उसको, सच्चे दिल वाले को बाप का प्यार मिलता है। चेक करो, परिवार में रहते हो, समाज में रहते हो, धन आता है वो कहीं भी व्यर्थ खर्च तो नहीं होता है। इस संगम की जैसे समय एक बहुत बड़ी अमानत है, संकल्प एक बड़ी अमानत है, ऐसे ही स्थूल संपत्ति भी अमानत है, और ये केवल ईश्वरीय सेवा में सफल होनी चाहिए, नए विश्व के निर्माण में लगना चाहिए, ये समझ चाहिए। अगर वो नए विश्व के निर्माण के कार्य में नहीं लग रही है, तो आपकी संपत्ति व्यर्थ जा रही है। और कोई भी माँ बाप व्यर्थ खर्च करने वाले बच्चे पर खुश नहीं होता, व्यर्थ गंवा रहा है, व्यर्थ खर्च कर रहा है। हम सभी भी बाबा की अमानत को व्यर्थ नहीं कर सकते हैं, ये प्रभु अमानत है। और नए विश्व के निर्माण के लिए बाबा ने धन दिया है, तन दिया है, मन दिया है, विशेषताएं दी हैं, वो निर्माण के कार्य में लगनी चाहिए। और निर्माण का कार्य करते हुए बहुत निर्माण चित स्थिति चाहिए। अगर निर्माण चित स्थिति नहीं है, जरा भी आ जाता है, मैं इतना करता हूं, लोगों को पता तो चलना चाहिए। कई ऐसे बाबा के बच्चे करते हैं, लेकिन वर्णन करके वो सारा किया हुआ खत्म कर देते हैं, वर्णन कर देते हैं। हमने सेंटर बनवा के दिया, हमने बहनों को इतना सहयोग दिया, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, हमने यज्ञ में इतनी मदद की, अगर इस प्रकार की भावनाएं अंदर रहती हैं तो बाबा कहते हैं उसका खाता खाली रहता है। कितना भी वो अच्छा काम कर ले वो भगवान के खाते में जमा नहीं होता। इसलिए ध्यान देना सभी बाबा के बच्चे, ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, बाबा का एक ही मंत्र था, इस हाथ से करो इसको भी पता न चले। गुप्त दान महापुण्य, और ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। ब्रह्मा बाबा की अपनी लौकिक जागीर जो थी, बिजनेस जो था, हीरे जवाहरात का, जो भी उसका पैसा आया, जो भी आया, एक धक से बहनों के आगे, माताओं के आगे समर्पित किया। और उसके बाद ये नहीं पूछा तुमने कहां खर्च किया, कहां खर्च हो गया। आज कोई देता है अगर मुझे हिसाब चाहिए आपने कहां खर्च किया, और बहनों को भी अपने प्रभाव में दबाव में रखना चाहता है। तुमने तो अपना यज्ञ के लिए, बाबा के लिए दिया, सच्चे दिल से दिया, अगर बीच में कोई गलत कर रहा है तो उसका हिसाब किताब हो जाने, मैं अपने आप को क्यों डिस्टर्ब करूं। आपका तो सच्ची दिल वाले का सफल हो गया, लेकिन नहीं, मुझे तो एक एक पैसे का हिसाब चाहिए, मैंने इतना सब सहयोग दिया, इतनी मदद की। ये बहनें पता नहीं क्या करती हैं, कहां ले जाती हैं, यज्ञ में देती या नहीं देती, छोटी छोटी बातों में दिखावा करना, अपने दबाव में रखना, सहयोग देना और उसका दुरुपयोग करना, ये बहुत बड़ा पाप है। हम सब बाबा के बच्चों को बहुत ध्यान देना चाहिए, भगवान हमारे पर राजी कैसे होगा। आज भगवान राजी हो गया तो मम्मा जो एक पैसा भी यज्ञ में नहीं लाई उसको श्री लक्ष्मी बना दिया। विचार करके देखो, उस पर इतना राजी हो गया, इतना राजी हो गया, संगम पर सरस्वती बन गई और भविष्य में श्री लक्ष्मी बन गई। क्या किया, क्या किया मम्मा ने? कोई ने अगर मम्मा की महिमा की, इतनी सब सेवाएं, इतने बड़े यज्ञ के विघ्नों को मम्मा ने अपनी पावर, दिव्यता की शक्ति से, पवित्रता की शक्ति से, योग की शक्ति से सबका सामना किया, यज्ञ को डूबने से बचाया। कितनी सारी परिस्थितियां थी, बाबा तो मेलतन होने के कारण, बहनों की संस्था में बाबा तो बिल्कुल किनारे रहे, मम्मा को ही सब बातों का फेस करना हुआ, सबका सामना किया। लेकिन वही स्वरूप दुर्गा हूं, काली हूं, सरस्वती हूं, उस दुर्गा रूप में स्थित रह करके सब दुर्गुणों को खत्म किया। और इतनी सब सेवाएं करके अगर कोई ने मम्मा की महिमा कर दी तो मम्मा ने कहा, प्रभु प्रसादे, मैं नहीं कर रही, वो करा रहा है, हुक्मे हुक्म चला रहा है, उसके हुक्म से हो रहा है, मैं क्या कर रही हूं। इतना गुप्त रह करके, गंभीर रह करके मम्मा श्री लक्ष्मी बन गई। और यहां थोड़ा सा कोई अगर सहयोग देता है, मदद करता है, 10 लोगों के आगे वर्णन करता है, मैंने किया, ये किया, वो किया, जैसे इन्हीं के आधार से सेंटर चलते हैं, इन्हीं के आधार से यज्ञ चल रहा है। बहुत ध्यान देना, भगवान को राजी करना क्या सच्चाई है, उस सच्चाई को यथार्थ समझना, ये सच्चाई है। कि अगर हमने इस हाथ से किया, इसको भी नहीं पता चलने दिया, गुप्त रीति से सहयोगी बने। कई बाबा के बच्चे आते हैं, गुप्त भंडारी में अच्छी तरह से डाल के जाते हैं, हाथ में थोड़ा सा देते हैं लोगों को खुश करने, दिखाने के लिए थोड़ा सा, लेकिन अपना भाग्य बनाने का उन्होंने साधन देख लिया कि किसी को क्यों पता चले, क्यों बताऊं मैं इतना किया, मैं ये करता हूं। बहुत गुप्त रीति से बाबा की भंडारी में डालते हैं, कोई को पता ही नहीं चलता कहां से आया, कितना आया, किसने किया। और कोई कोई तो 50 रुपया भी देंगे, उसमें पूरा एड्रेस लिखेंगे, नाम लिखेंगे, उसका जवाब मांगेंगे, मिला या नहीं मिला उसका भी पत्र मांगेंगे। कितनी बहुत कर्मों की गुहे गति है, लीला है। और इस प्रभु लीला को समझना, भगवान को राजी करना कोई सहज बात नहीं है। और अगर वो राजी हो गया तो आपके लिए कोई भी असंभव बात नहीं है। ब्राह्मण जीवन में बाबा की डिक्शनरी के अंदर असंभव शब्द है ही नहीं, सब कुछ संभव है। जो ब्राह्मण संकल्प रचले होना ही है, संकल्प को भी सिद्धियां प्राप्त हैं। अब ऐसी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं जिनका डायरेक्ट भगवान के साथ कनेक्शन है, संगम युग एक ऐसा युग है जिसमें हम आत्माएं केवल, हम केवल बाबा से मिल सकते हैं, भगवान से मिल सकते हैं। आप देखो न देवताएं मिले न भक्त मिले। सत्ययुग त्रेता में देवताओं के साथ भी भगवान नहीं है, द्वापर कलयुग में भक्तों के पास भी नहीं है, केवल पूजा है, अर्चना है, मूर्ति है, न एड्रेस का पता है, न संबंध है, न कोई प्राप्ति है। लेकिन एक ऐसा ये युग है, संगम युग, जिसमें हम सब का डायरेक्ट कनेक्शन है, डायरेक्ट सर्व संबंध है। माता पिता के रूप में अलौकिक जन्म मिला है, पालना हो रही है, इतना ऊंचा ज्ञान, ज्ञानदाता डायरेक्ट हम बच्चों को दे रहा है और सतगुरु बनकर के श्रेष्ठ मत दे रहा है, श्रीमत और वरदान दे रहा है। तो हम सब इतनी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हैं, हम अपने भाग्य को पहचाने और जो कुछ हम करें बहुत निमित्त भाव से निर्माण चित बन करके, वाह बाबा वाह, करावन हार करा रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, किस चीज का दिखावा, किस चीज का अभिमान। बहुत नम्रता, बहुत धैर्यता के साथ बाबा के गुण गाओ, खुशी के गीत गाओ, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, जो उसने मुझे चुन लिया, मुझे अपने लायक समझा, मुझे अपनी सेवा में अपना साथी बना लिया, इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा। ऐसी भाग्यवान आत्माएं हम सब अपने दिल को, अपने बुद्धि को स्वच्छ और साफ रखें, बस भगवान राजी हो जाएगा। कोई भी कार्य सहज संभव है। अगर सूली जितनी भी परीक्षा कोई होगी ना, सूली जितनी, पहाड़ जितनी, वो सूली भी कांटा बन जाएगी, पहाड़ भी एक राई बन जाएगा, रुई बन जाएगी। भगवान राजी है, क्या बड़ी बात है। किया है सभी ने राजी है, किया है आप सबने, जिन्होंने, अब बताओ जिन्होंने भगवान को राजी किया है। अभी बहुत काम हाथ उठ रहे हैं। अगर हम सब ने सच्चाई से भगवान को पहचान करके उसको राजी कर लिया है तो बेफिक्र बेगमपुर के बादशाह, बेफिक्र बादशाह ही है, बेगमपुर की राजाई है, कोई चिंता नहीं। क्यों चिंता करें, बाबा बैठा है। बाबा को अगर हमने पहचान लिया तो कलयुग के अंदर रहते, समस्याओं के बीच में रहते, अनेक परिस्थितियों को पार करते भी हम सब चिंता मुक्त रह सकते हैं। नहीं तो चिंताएं तो टोकरी पर, सिर पर रखी हैं सबके। और बाबा के बच्चे बनने के बाद भी अगर कोई को चिंता है, भय है, फिकराते लगी पड़ी हैं, क्या होगा, कैसे होगा, ये होगा, तो बाबा कहते हैं इसने कहां बाबा को पहचाना है। बाबा को पहचान लिया तो सदा प्रसन्न चित्त स्थिति है, खुश नुमा स्थिति है, तो सभी खुश मिजाज, खुश नुमा, खुश किस्मत बन करके बहुत दिल से बाबा को, बहुत प्यार से बाबा को, बाबा आपके सदा साथ है और सदा मदद के लिए बंधा हुआ है। बच्चों को नहीं करेगा तो किसको करेगा, भक्तों को करेगा जाके। हम तो उसके बच्चे हैं, लेकिन बच्चे वो हैं जो सपूत हैं, आज्ञाकारी हैं, सच्चे हैं, दिल वाले हैं, उनको बाबा मदद करते। चलो अभी बाबा का अच्छा अनुभव करो, आधा घंटे के लिए बाबा के प्यार में समा जाओ। इस सभा में बाबा का आह्वान करो, बाबा आओ। और मेरा ये मस्तक, ये दिल बहुत साफ है, स्वच्छ है, आप आकर के इस दिल तख्त के आसन पर मेरे साथ कंबाइंड हो जाओ। हो सकता है, करना, देखना, सच्चे दिल से बाबा को बुलाओ और अनुभव करो बाबा मेरे दिल के में बिल्कुल समीप साथ में भ्रकुटी आसन पर कंबाइंड है। मैं उनकी शक्तियों का, उनकी पवित्रता का गहन अनुभव कर रहा हूं। तो अभी हम सब आधा घंटे के लिए विशेष योग अभ्यास करेंगे। ओम शांति।
सभी अपने
अकाल तख्त पर चमकते हुए स्वरूप का अनुभव करो। मैं आत्मा एक लाइट हूँ, सर्वशक्तियों से संपन्न एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। बाबा के साथ मैं कंबाइंड हूँ। उनके संग का रंग मुझे संपूर्ण पावन बना रहा है। मैं आत्मा सर्वशक्तियों से संपन्न शांति दूत हूँ। शांति के प्रकंपन इस वायुमंडल में चारों ओर फैल रहे हैं। अपने लाइट हाउस स्वरूप में स्थित होकर इस विश्व में ज्ञान का प्रकाश, शांति का प्रकाश, चारों ओर फैलता हुआ अनुभव करो। अनेक भटकती हुई आत्माएं तड़फती हुई आत्माएं शांति का अनुभव कर रही हैं, सुख का अनुभव कर रही हैं। अज्ञानता के अंधकार से प्रकाश की ओर आ रही हैं। मैं प्रकृति जीत आत्मा प्रकृति पति के साथ कंबाइंड हूँ। प्रकृति के पांचों तत्व मुझ प्रकृति जीत आत्मा के द्वारा शांति का अनुभव कर रहे हैं। अपने तमोगुण को छोड़ रहे हैं। मुझ आत्मा के चारों ओर पवित्रता का आभा मंडल चमक रहा है। मैं अपनी उस चमकीली ड्रेस में, फरिश्ता ड्रेस में प्रवेश कर इस अकाल लोक से पार फरिश्तों की दुनिया में बाप दादा के सन्मुख हूँ। बाबा के मस्तक से निकलती हुई किरणें मुझ आत्मा को समान भाव का वरदान दे रही है। मेरे मस्तक पर बाबा का वरदानी हाथ है। मैं फरिश्ता बाबा की सर्व शक्तियों से संपन्न बन इस पूरे ग्लोब को सर्च लाइट दे रहा हूँ। अपने सब संकल्पों को एक बीज में समाकर अपने निराकारी घर में बीज रूप बाबा के बिल्कुल समीप उस परम धाम घर की असीम शांति का वहां की पवित्रता का परमात्म शक्तियों का अनुभव करो। परमात्म प्यार में लवलीन हो जाओ। अनुभवों के सागर में समाने का अनुभव करो। उस शांति के सागर के तले में चले जाओ। शीतलता का अनुभव करो। असीम शांति के तले में शांति की शक्ति से संपन्न उस सच्ची शांति का स्वीट साइलेंस का अनुभव करो। ज्ञान सूर्य बाबा की। सर्वशक्तियों रूपी किरणें मुझ आत्मा को संपूर्ण पावन बना रही हैं। सर्वशक्तियों का अनुभव करो। अपने संगम युग के इस अलौकिक भाग्य का अनुभव करो। मैं कितनी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा प्रभु मिलन का परमानंद अनुभव करने वाली आत्मा। इतनी खुश नसीब आत्मा हूं कितनी भाग्यवान आत्मा हूं जो मुझे डायरेक्ट भगवान का प्यास उनकी पालना उनकी सर्वशक्तियां प्राप्त हैं। सभी उसी नशे और खुशी में ही वाह मेरा भाग्य वाह मेरा बाबा और वाह ड्रामा की भाभी। इसी चिंतन में बाबा को शुक्रिया करो।
समाया वो होगा, हम धन्य तभी बन पाए।